ओम शांति। हमारे मध्य उपस्थित हैं हमारे अति स्नेही आदरणीय शांति दीदी जी। हम सब एक हाथ की ताली से आपका अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आप बाबा का वो अमूल्य रत्न है जिन्होंने बचपन की अल्प आयु में ही साकार तन में अवतरित उस त्रिलोकपति को पहचान लिया जिसको भक्त पुकारते और ढूंढते रहते हैं तो भी पा नहीं सकते। और बचपन से ही आप इतनी भाग्यशाली आत्मा रही हैं कि आपके लौकिक घर में ही सेवा स्थान बन गया था। आपके जीवन में लौकिक और अलौकिक परिवार कैसे लौकिक से अलौकिक बनता है, एक बहुत बड़ा ऐसा समूह आपने देखा और उसको आपने जिया है। आश्रम पर रह करके ही आपने पढ़ाई भी की, सेवा भी की। 1972 में आपने दिल्ली IIT से MSc पास किया तो उस क्वालिफिकेशन में भी आप बहुत आगे गए, तो ईश्वरीय क्वालिफिकेशन में भी आप बहुत आगे चले गए। 1972 के बाद आप संपूर्ण रूप से सेवाओं में समर्पित हो गए। कुछ समय जम्मू कश्मीर, जो बहुत टिपिकल एरिया है, वहाँ आपने सेवाएं प्रदान की और उसके बाद दिल्ली का एक बहुत विशेष सेवा स्थान सिरी फोर्ट, जहाँ बहुत विशेष विशेष सेवाएं रहती हैं आदरणीय शांति दीदी जी, वहाँ अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। और बहुत क्रिएटिव, बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं आप, ऑलराउंडर सेवाधारी हैं, बहुत विदुषी योगिन और कर्म भोग को कर्म योग से जीतने का एक बहुत सुंदर उदाहरण है आप। पीछे जो एक सुंदर प्रोजेक्ट चला था पीस के ऊपर, वो आपके ही इस विशिष्ट मन और बुद्धि की क्रिएशन थी जिसके द्वारा हमने देखा बहुत आत्माओं की सेवा हुई, जो 21 दिसंबर डेट घोषित की गई थी दुनिया की तरफ से विनाश की, उस दिन उसका समापन होना था और बहुत सुंदर सेवाएं उसके द्वारा हुई। देश विदेश में, भारत के कोने कोने में आपने अपने ज्ञान के गहन अनुभव और साथ साथ साकार के संग के अनुभव आपके जीवन की एक अमूल्य शान है। तो आज हम आदरणीय दीदी जी से सुनेंगे शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा, क्या देखा, क्या पाया आदरणीय शांति दीदी जी। एक सूचना है छोटी सी, एक माता का पर्स जिसमें बहुत कीमती सामान और बहुत जरूरी पेपर थे 4 नंबर गेट के पास से मिस हुआ है। किसी को भी अभी दिख जाए, मिल जाए तो माता जी गेट के बाहर खड़ी हैं और बेटर है स्टेज के पीछे दे जाए तो यहाँ से आकर के कलेक्ट कर सकती हैं। जिसको भी दिखे उसको बहुत जरूरी चाहिए। और ग्रीन कलर बैग है, ATM कार्ड है उसके अंदर। कृष्ण देव करोस सेंटर HP, ये जिसका हो लेके जा सकते हैं। आदरणीय शांति दे दीजिए।
ओम शांति। मैं समझती हूँ कि ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि बहुत छोटी आयु में ही अपने लौकिक माता पिता के साथ हमको ये ज्ञान मिला और साकार में बाबा मम्मा से भी मिलने का बहुत अच्छा अवसर मिला। जब मैं पहली बार यहां मधुबन में आई थी तो मेरी आयु 7 वर्ष की थी, और जब बाबा को हम अपने सामने देखते थे तो बाबा के व्यक्तित्व में हमको हर बात का संतुलन, बैलेंस दिखाई देता था, क्योंकि बाबा का रहन सहन, वेशभूषा, ये सब तो बहुत सिंपल था, सादगी थी बाबा के जीवन में। लेकिन जब बाबा का मस्तक, चेहरा हम देखते थे तो उस चेहरे में, नैनों में बहुत रॉयल्टी, बहुत महानता नजर आती थी। तो सादगी और महानता, सादगी और रॉयल्टी का कैसे जीवन में संतुलन रखना है, तो वो बाबा के व्यक्तित्व में नजर आता था। और जब पहली बार बाबा से मिलना हुआ और बाबा को हमारे लौकिक परिवार का परिचय दिया गया, तो जैसे ही शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा हमको दृष्टि देते थे, और हम जानते हैं कि शिव बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं, तो एक सेकंड में ही जो भी आत्मा बाबा के सामने जाती थी तो बाबा की दृष्टि पड़ते ही बाबा को उस आत्मा के तीनों काल, उसका पास्ट, वर्तमान और भविष्य, जैसे बाबा को तो मालूम ही होता था, और उस अनुसार ही बाबा हर आत्मा को वरदान देते थे। तो जैसे मैं भी जब बाबा के सामने आई तो बाबा ने दृष्टि देकर जो महावाक्य उच्चारे पहली बार में ही, तो बाबा ने कहा कि ये आत्मा, ये बच्ची यज्ञ से गई है और फिर से बाबा के यज्ञ में आई है, और भविष्य में भी इसको बहुतों का कल्याण करना है, हजारों लाखों आत्माओं का कल्याण करना है। तो जब मैंने ये महावाक्य सुने तो बहुत ज्यादा उस समय गहराई तो समझ में नहीं आई, लेकिन बाबा के वो शब्दों की जैसे छाप दिल पर लग गई, और मुझे ये निश्चय हुआ कि भगवान ही इनके द्वारा ये महावाक्य उच्चार रहे हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य, इंसान जो है, वो एक बच्चे को देखकर उसका भूतकाल भी बता दे, भविष्य भी बता दे, तो मन में आशा तो सभी रखते हैं, लौकिक माता पिता भी और भी जो बुजुर्ग होते हैं, कि ये बच्चा बड़ा होकर बहुत अच्छा, इसका भाग्य हो, कैरियर हो, अच्छा धन कमाए, या जो भी आजकल इंजीनियर डॉक्टर बने, लेकिन उनके बोल जरूरी नहीं सत्य सिद्ध होते हैं। तो जब बाबा ने पहली बार में ये महावाक्य उच्चारे, और जैसे बाबा कहते हैं कि तुम सब मेरी सजनियां भी हो, मैं साजन हूं, हर संबंध का अनुभव बाबा हमको कराते हैं, तो मैं पहली बार में ही बाबा ने मुझे भी पसंद कर लिया, अपनी सजनी बना लिया, क्योंकि बाबा ने अंगूठी भी हमको पहना दी। तो बाबा से वो संबंध भी जुट गया और हमारी लौकिक माता जी से जब नाम पूछा बाबा ने तो उनका लौकिक नाम माया था। तो जब उन्होंने बाबा को कहा मेरा नाम माया है तो बाबा ने कहा अरे माया तो सबको कच्चा खा जाती है, ये तो नाम अच्छा नहीं है। तो एक सेकंड के लिए बाबा ने आंखें बंद की और फिर उनको दृष्टि देकर, जैसे बहुत लोग कईयों का नाम बदलते हैं, कोई भी अच्छा नाम चुन के रख देते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बाबा त्रिकालदर्शी आत्मा के तीनों कालों को सामने रखते हुए फिर नाम देते थे या वरदान देते थे, तो उनको फिर बाबा ने ये शब्द कहे कि आज से तुम राम की सच्ची सीता हो और सच्चा गीता ज्ञान सुनाने वाली सच्ची गीता हो। तो उनको गीता नाम बाबा ने दिया और वो उनके लिए वरदान बन गया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 50-55 साल पहले माताएं जो हैं वो ज्यादा घरों में रहती थी और अपने सास ससुर लौकिक से दबके रहती थी। तो उनका भी ये संस्कार था कि उनको सबसे बहुत डर लगता था, किसी के सामने बोल नहीं पाती थी। लेकिन जब बाबा ने ये नाम दिया और उसके बाद हम दिल्ली वापस गए तो एक हफ्ते में ही वो वरदान से उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई, हमने देखा कि वो सबको गीता का ज्ञान सुनाने लगी, जो घर में ही आश्रम बन गया तो वही निमित्त बनी क्लास कराने के लिए। तो सभी हैरान होते थे कि इनमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई है। इसी प्रकार से हम देखते थे कि जैसे अभी भी हम सब यहाँ आते हैं, आप भी अनुभव करते होंगे कि यहाँ मधुबन में शांतिवन में बाबा के घर में घुसते ही हमको अपना लौकिक घर, लौकिक दुनिया, आज कौन सी तारीख है, कौन सा दिन है, ये सब हम भूल जाते हैं। आपका है ऐसा अनुभव? हाथ खड़ा करें, कौन कौन ऐसा अनुभव करते हैं? क्योंकि याद ही नहीं रहता है कि आज इतवार है, सोमवार है, कौन सा दिन है। बस गुरुवार को भोग लगता है तो फिर मालूम पड़ता है कि आज गुरुवार है। तो बाबा ने शुरू से ही मधुबन का, यहाँ का ऐसा वायुमंडल, बाबा मम्मा की तपस्या ने, हमारी दादियों की तपस्या ने ऐसा बनाया है, क्योंकि हम देखते थे कि बाबा की हर साधारण बात के पीछे बहुत गुह्य राज होता था। तो जैसे बाबा तब भी ध्यान रखते थे कि बच्चे आए हैं, पारलौकिक बाप के घर में आए हैं, बेहद बाप के घर में आए हैं, तो यहाँ पर बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सब प्रकार की सुख सुविधा, भोजन आदि सब अच्छा मिलना चाहिए। तो जिसके लिए बाबा खुद ही भोजन पहले उसका प्रोग्राम भी देते थे, आज क्या बनना है, और स्वाद भी देखते थे कि नमक मिर्च मसाला सब ठीक है। तो है तो ये साधारण बात, लेकिन बाबा इसलिए ध्यान रखते थे इस बात का, खुद सब बच्चों के कमरों में जाकर रात्रि को देखते थे, क्योंकि मई जून में उन दिनों में यहाँ पर थोड़ी हल्की सर्दी भी होती थी कि सबके पास कंबल है, बिस्तर है, सब ठीक है। तो बाबा किसी को भी कह सकते थे कि जाके देख आओ, लेकिन बाबा खुद आते थे और मच्छर नहीं होने चाहिए, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए बाबा इन बातों का, छोटी छोटी बातों का खुद ध्यान देते थे। बाबा कहते थे कि एक तो अगर यहाँ बच्चों को कोई भी असुविधा होगी, भोजन अच्छा नहीं मिलेगा, रहने की जगह ठीक नहीं मिलेगी, तो बच्चों को अपना लौकिक घर याद आएगा और यहाँ पर मेहमान की तरह, मुसाफिर की तरह मजबूरी से 3-4 दिन रहेंगे। और दूसरी बात कि जब लौकिक याद आएगा तो यहाँ जो कमाई करने के लिए आए हैं, योग नहीं लगेगा, बाबा को याद नहीं करेंगे, जो 3-4 दिन में, हफ्ते में अविनाशी कमाई करनी चाहिए वो कैसे करेंगे, मुरली में ध्यान नहीं रहेगा। तो इसलिए बाबा इस बात का बहुत ध्यान रखते थे कि एक तो बच्चों को ये अनुभव हो कि हम अपने बेहद बाप के घर में आए हैं। इसलिए हम ये देखते थे कि लौकिक से भी ज्यादा, हमारे लौकिक माता पिता से भी ज्यादा प्यार बाबा हमको देते थे, हमारी पालना करते थे। और ये भी हमने देखा कि सिर्फ सूक्ष्म आत्मा की पालना नहीं ज्ञान से, लेकिन स्थूल रूप में भी, क्योंकि बाबा आप जानते हैं बहुत निरहंकारी थे, उनके जीवन में महानता और निर्माणता कि जितने ही महान आत्मा थी, शिव बाबा का रथ था, इतना बड़ा कार्य के लिए शिव बाबा ने उनको निमित्त बनाया था, लेकिन उसका जरा भी बाबा को अहंकार, रिंचक मात्र भी वो मन में भान नहीं था और बहुत ही निरहंकारी, हर समय बच्चों की सेवा के लिए बाबा तैयार रहते थे। तो जैसे यहां मधुबन में भी पांडव भवन में सुबह सुबह नाश्ते के बाद उस समय पर बहुत बड़ी केतली एल्यूमिनियम की होती थी चाय की, वो बाबा खुद अपने हाथ में उठाकर इतनी बड़ी आयु में भी तो प्यार से बच्चों को बुलाते थे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ लाडले बच्चे, और हम सब अपना अपना ग्लास या कप लेके जाते थे और बाबा खुद उसमें चाय सर्व करते थे। तो आप देखेंगे कि आज अगर हम किसी को भी कहते हैं कि कोई मेहमान आए हैं उनको जाके थोड़ा चाय टोली दे आओ, तो किसी किसी को थोड़ा देह अभिमान भी आता है कि मैं, ये तो बहुत छोटा सा काम है, साधारण काम है, मैं जाऊं देने, आप किसी और को भेज दो। लेकिन बाबा खुद प्यार से बच्चों को ये चाय पिलाते थे। और एक बार दिल्ली में बाबा आए थे तब 1000 ब्राह्मण थे वहां पर, सभी दिल्ली के सेंटर्स वाले आते थे जहां बाबा ठहरे हुए थे डॉक्टर माथुर की कोठी पे, तो सुबह धूप में बाहर बगीचे में एक बहुत बड़ी टेबल थी जैसे डाइनिंग टेबल होती है, तो बाबा उसके ऊपर खड़े हो गए। उस समय बाबा की आयु 90 वर्ष थी। तो आप सोच सकते हैं कि 1000 को, भाई बहनों को बाबा ने टेबल पर खड़े होकर धूप में उस केतली से चाय दी। तो कितना बाबा का बच्चों से प्यार था कि हर प्रकार से बच्चों की मैं सेवा करूं। इसी प्रकार से बाबा हमको लौकिक अलौकिक का बैलेंस रखना है, क्योंकि जैसे हम पढ़ाई पढ़ते थे स्कूल में तो ज्यादातर गर्मी की छुट्टियों में ही मधुबन आना होता था, तो जैसे लौकिक बाप बच्चों की रिपोर्ट देखते हैं कि इम्तिहान में कितने नंबर आए हैं, कैसा है रिजल्ट, तो बाबा खुद उसको देखते थे। और अगर पिछले साल अच्छे नंबर थे, इस साल कम है, तो वो भी बाबा ध्यान देते थे, पूछते थे ऐसा क्यों। तो बाबा ये कहते थे कि अगर पहले तुम्हारे अच्छे नंबर आते थे, अब कम आते हैं, तो तुम्हारे लौकिक संबंधी टीचर्स जो और सहेलियां वगैरह हैं, वो सब कहेंगे कि देखो अब ये ब्रह्मा कुमारियों के उधर जाने लगे तो इनका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, पहले तो बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ते थे। तो इसमें नाम तो बाबा का बदनाम हुआ ना। तो बाबा यही कहते थे कि आपका हरेक कर्म ऐसा होना चाहिए जिससे बाबा का नाम बाला हो, कोई भी ऐसा कर्म नहीं हो लौकिक में भी रहते हुए जिससे बाबा का नाम बदनाम हो, बाबा का नाम आपको बाला करना है। इसी प्रकार से हर बात, जैसे मैंने बताया कि बहुत साधारण रीति से समझाकर ज्ञान के गुह्य राज समझा देते थे। तो सुबह क्लास के बाद हम बाबा के साथ सैर करने जाते थे पहाड़ों पर, क्योंकि अभी तो पांडव भवन और आसपास ओम शांति भवन बहुत मकान बन गए हैं, उस समय पर सिर्फ पांडव भवन छोटा सा था, तो सामने पहाड़ थे, वहां पहाड़ी पर बाबा ले जाते थे। इसी प्रकार से ब्रह्मा भोजन हर गुरुवार को बाबा के साथ हम खाते थे और खेलते भी थे, बाबा क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे बच्चों के साथ, और इतनी बाबा में शारीरिक रूप से भी ताकत थी उस आयु में जो कोई भी बाबा को हरा नहीं सकता था, बाबा ही जीतते थे हर खेल में। लेकिन बाबा ये सब साधारण कर्म करते हुए अचानक बीच में सवाल पूछते थे, क्योंकि बाबा देखते थे कि अब जैसे हम भोजन खाते हैं तो शुरू में बाबा को याद करते हैं, दृष्टि देते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं या भोजन के स्वाद में ध्यान चला जाता है, सैर करने जाते हैं तो भी इधर उधर के नज़ारे देखने लगते हैं, खेल में भी खेल में ही ध्यान हो जाता है। तो बाबा देखते थे कि अब बच्चों का ध्यान जो है वो सिर्फ इस कर्म में है। तो बीच में अचानक बाबा सवाल पूछते थे कि बच्चे किसके साथ सैर कर रहे हो, किसके साथ भोजन खा रहे हो, किसके साथ खेल रहे हो। तो हम कहते थे बाबा के साथ। तो बाबा पूछते थे कौन से बाबा के साथ, तो हम कहते थे शिव बाबा के साथ, क्योंकि बाबा कहते हैं हमेशा शिव बाबा को याद करो। तो बाबा कहते थे शिव बाबा तो ज्योति बिंदु है, निराकार है, परम धाम में है, कहाँ है शिव बाबा मुझे दिखाओ। फिर हम कहते थे ब्रह्मा बाबा के साथ, तो बाबा कहते थे इसका मतलब तुम देहधारी को देख रहे हो, शिव बाबा तुमको याद नहीं है। तो दोनों उत्तर में बाबा हमको फेल कर देते थे कि दोनों ही उत्तर गलत हैं। तो फिर बाबा हमको समझाते थे कि शिव बाबा से तुम के साथ भोजन नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते जब तक वो ब्रह्मा तन में नहीं आए, और ब्रह्मा ब्रह्मा तभी बना जब शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया। तो इसलिए बाप दादा इकट्ठे हैं, कंबाइंड हैं, आप अलग नहीं कर सकते। तो जब भी बोलो बाबा तो बुद्धि में रखो बाप दादा, हमारे सामने बाप दादा हैं। तो तीन चार दिन तक बाबा ने हमको ये अभ्यास कराया, जैसे हम गुड मॉर्निंग बाबा, गुड नाइट करने जाते थे, जी बाप दादा, तो बाबा कहते थे बाबा नहीं बोलो बाप दादा बोलो। तो पक्का कराया वो अभ्यास कि बच्चों को पक्का हो जाए कि ये कंबाइंड हैं, इकट्ठे हैं। तो इस प्रकार से बाबा का शिक्षा देने का तरीका बहुत अच्छा था। जैसे पार्टियां आती थी तो वो चाहते थे बाबा के साथ हम अपना फोटो खिंचाएं, ग्रुप फोटो हो, तो बाबा को जाके कहते थे हमने आपके साथ फोटो खिंचाना है, तो बाबा उस पे भी समझानी पहले देते थे कि शिव बाबा तो विचित्र है, उसका फोटो तो आप ले नहीं सकते और देहधारी का तो फोटो रखना नहीं है, तो इसलिए फोटो लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर बच्चों का दिल रखने के लिए बाबा आ भी जाते थे, बच्चों के साथ फोटो खिंचवा लेते थे। इसी प्रकार से जैसे बाबा उस समय अखबार भी पढ़ते थे, यानी सारे दुनिया का समाचार आप सबने मुरली में सुना है, जैसे अभी भाई जी भी सुना रहे थे, हमारे भाई साहब वरिष्ठ भ्राता, कि उस समय ब्रह्मा कुमारी आश्रम में लोग आना नहीं चाहते थे, सब डरते थे ओ मंडली के जादू से। तो बाबा का बहुत विचार सागर मंथन चलता था कि कैसे सबको संदेश दिया जाए, कैसे सेवा की जाए। तो बाबा जब अखबार पढ़ते थे तो आपको मालूम है अखबार में कोई भी शरीर छोड़ देते हैं तो उनकी फोटो छपती है और उनके बेटा या बेटी वो डालते हैं कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, इस दिन हुआ, ऐसे हुआ, तो उसमें नाम और पता होता है। तो बाबा वो पढ़ के कहते थे कि आप उनको चिट्ठी लिखो उसमें से नाम और एड्रेस देख के, और उनको ये लिखो कि ये कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू, 5000 साल पहले भी इसी दिन इसी तरीके से तुम्हारे पिताजी ने शरीर छोड़ा था, अभी छोड़ा है, 5000 साल के बाद फिर ऐसा ही होगा। तो मतलब चिट्ठी लिखेंगे उनको पहुंचेगी तो या तो उनको गुस्सा आएगा कि भी हमारे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया और ये क्या लिख रहे हैं, नई बात नहीं है, फिर से होगा, या फिर किसी के मन में जिज्ञासा होगी कि इसका क्या मतलब है, कौन है ये लिखने वाला। तो दोनों तरीके से, गुस्सा आएगा तो भी वो तुम्हारे पास आएंगे पूछने के लिए, तो सेंटर पे तो आएंगे तो आप उनको ज्ञान सुना सकेंगे। इसी प्रकार से बाबा कहते थे कि बाहर जो है सेंटर के बाहर बोर्ड लगा दो कि इस, क्योंकि ये तो सभी मानते हैं ना कि ये दुनिया एक ड्रामा है, हम इसमें एक्टर्स हैं, तो उसमें लिखो कि मनुष्य होकर इस ड्रामा के एक्टर होके जो इसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते वो इडियट है, मतलब एकदम बेवकूफ है, मूर्ख है, तो ऐसे लिखो। तो ऐसे ऐसे शब्द बाबा कहते थे कि वो आएंगे पढ़ेंगे तो वो भी आके आपसे पूछेंगे ये आपने क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। और इसी प्रकार से जैसे अखबार में उस समय पर, आजकल भी सिनेमा फिल्म आदि के नाम आते हैं, लेकिन उस टाइम में पूरा पूरा पेज होता था जिसमें उनके फोटो नाम सब होते थे। मतलब बाबा ने ये कर्म करके सिखलाया कि लौकिक दुनिया में जैसे हम भी रहते हैं तो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड ये वो सब आंखें खुली है तो दिखाई तो देता है, लेकिन कैसे हमको हर लौकिक बात को देखते हुए उसको बुद्धि में ज्ञान से परिवर्तन करना है, ज्ञान से उसका अर्थ निकालना है, हमको उसमें आकर्षित नहीं होना है। तो बाबा वो भी पढ़ते थे फिल्मों के नाम, और आपने सुना होगा मुरली में, साकार मुरली में उस समय एक फिल्म आई थी जो हमारे बहुत बुजुर्ग भाई बहन है उनको याद होगा, एक मुसाफिर एक हसीना। तो बाबा जैसे मुरली में कहते हैं ना कि मैं एक मुसाफिर, तुम सब आत्माओं को हसीन बनाने आया हूं, तो जैसे उसका भी ज्ञान से अर्थ, इसी प्रकार से फिल्मी गीत बजते थे तो कई हमको कहते थे आपके यहाँ फिल्मी गीत बजते हैं, तो बाहर भी तो वही सुनने को मिलता है, लेकिन बाबा कैसे हमको मुरली के द्वारा सिखाते हैं कि भले वो गीत सुनो लेकिन उसका ज्ञान से अर्थ निकालो, उसको बाबा की तरफ ले जाओ। बाबा से हमारी प्रीत है, बाबा हमारा साजन है, प्रीतम है, तो आपको बाबा याद आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा, जैसे पहले की क्लास में हमने सुना कि बहुत माताएं अनपढ़ आती थी, उस समय तो इतना स्कूल में जाती नहीं थी, तो वो यही कहती थी बाबा को कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे सेवा करूंगी, मैं कैसे ज्ञान सुनाऊंगी। तो बाबा उनको कहते थे कि अनपढ़ हो तो अच्छे हो, भाग्यशाली हो, आपकी ये जो स्लेट है बुद्धि रूपी स्लेट ये बिल्कुल साफ है, तो इस पर जो बाबा लिखेंगे, जो ज्ञान आपको सुनाएंगे, वो सहज आपकी बुद्धि में बैठेगा। जिन्होंने बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, वो सब पढ़ा है, उनको तो कई संशय आते हैं मन में, टाइम लगता है। तो इस प्रकार से बाबा की ये भी विशेषता थी कि बाबा बच्चों के साथ बच्चा, युवा के साथ युवा और बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग बन जाते थे। तो जैसे मैंने बताया मैं 8 वर्ष की थी, बाबा उस समय 80 वर्ष के थे, लेकिन कभी भी हमको मन में ये संकोच नहीं हुआ कि बाबा इतने बड़े हैं, इतने बड़ी संस्था के हेड हैं, मैं कैसे इनके नजदीक जाऊं, कैसे बात करूं। लेकिन ऐसा अपनापन महसूस होता था, बाबा का प्यार मिलता था कि लौकिक माता पिता से भी ज्यादा हम दिल खोलकर बाबा से बात कर सकते थे। जो लौकिक में भी हम अपना इतना दिल खोल के बात मैं नहीं करती थी, लेकिन बाबा के सामने जाते ही बहुत अच्छी तरह, जैसे बाबा हमारे अपने हैं, ऐसा अनुभव होता था। और बाबा ने हर एक बात, जैसे मैंने कहा, कर्म करके सिखलाया। तो यज्ञ सेवा भी जो करनी होती थी, हमने कभी नहीं देखा कि बाबा ऐसे एक जगह बैठकर किसी को कह रहे हैं कि आपको अनाज साफ करना है, आपको सफाई करनी है, आपको बर्तन साफ करने हैं। ड्यूटीज उस समय नहीं लगती थी क्योंकि छोटा परिवार था, तो एक परिवार की तरह जैसे घर में सब मिलजुल के करते हैं काम। क्योंकि जितने दिन हम मधुबन में होते थे, हमारा मन करता था कि हम ज्यादा समय बाबा के पास ही रहें, बाबा के साथ ही बिताएं। तो एकदम हम पूछते थे बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है। तो जब मालूम पड़ता था कि बाबा भंडारे में हैं, सब्जी काट रहे हैं, अनाज साफ कर रहे हैं, गौशाला थी वहां भी बाबा जाते थे, तो जहां हमको मालूम पड़ता था सब बच्चे भी वहां पहुंच जाते थे। और जब बाबा जो काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, साथ में बच्चे भी लग जाते थे। तो ऐसे हमने देखा कि कर्म करके बाबा ने सिखलाया। और आपने शायद ये बात पहले सुनी हो या नहीं, जब ग्रुप्स आते थे बाबा से मिलने, पार्टियां आती थी, तो जैसे साधारण रूप से परिचय लिया जाता है, जैसे आपके शहर में भी कोई पहली बार आता है तो आप उससे पूछते हैं मेहमान से कि आप यहाँ पहली बार आए हो, तो अगर पहली बार आए हो तो आपको घुमाएंगे, इधर उधर ले जाएंगे। तो बाबा भी ऐसे बच्चों से पूछते थे कि मधुबन में पहली बार आए हो, बाबा से पहली बार मिल रहे हो। तो बहुत बच्चे तो इसके पीछे क्या राज है कि बाबा का कोई साधारण प्रश्न नहीं होता था, लेकिन परीक्षा होती थी। तो ज्यादातर सभी कहते थे हाँ हम पहली बार आए हैं। तो बाबा जो है उन बच्चों को फेल नहीं करते थे, लेकिन जो पंडा जो ब्राह्मणी टीचर साथ लेके आती थी तो उन बहनों को कहते थे कि तुम फेल हो, तुमने इनको ठीक से पाठ नहीं पढ़ाया। तो बाबा कहते थे कि सही उत्तर होना चाहिए, ज्ञान युक्त समझकर, ऐसे तोते की तरह भी रट के नहीं बोलना है कि इस कल्प में पहली बार आए हैं, तो पूरा परिचय मिल जाएगा। ऐसे तो अनेक बार आए हैं। तो पहला होता था ज्ञान की परीक्षा, ज्ञान का सब्जेक्ट। फिर जो परिवार प्रवृत्ति वाले आते थे उनसे बाबा पूछते थे आपके कितने बच्चे हैं, जैसे परिचय लिया जाता है। तो वो माता और भाई दोनों होते थे तो भाई बोलेगा दो, फिर माता बोलेगी नहीं नहीं तीन, ऐसे मतलब। तो उनको शिव बाबा बाद में याद आता था कि बाबा भी हमारा बच्चा है। तो बाबा ये देखते थे कि इन्होंने बाबा को बच्चा बनाया है कि नहीं, लौकिक तो सबको याद रहते ही हैं। तो ये ज्ञान और योग की दोनों सब्जेक्ट की परीक्षा इन दो प्रश्नों में होती थी। तो जब बाबा हमको कहते थे बहनों को कि आप फेल हो, तो हमने कहा ये तो अच्छी रिजल्ट नहीं है। तो फिर हम जब ट्रेन में आते थे पार्टी को लेके, तो हम पक्का करते थे, उनको सिखा देते थे कि बाबा ये प्रश्न पूछेंगे, आपको ये उत्तर देना है। तो उसके बाद बाबा ने देखा ये तो सभी राइट उत्तर दे रहे हैं, तो फिर बाबा समझ गए। बाबा ने कहा ये आपको ट्रेन में अच्छी ट्रेनिंग मिल गई है। तो इस प्रकार से बाबा, जैसे मैंने बताया कि बहुत युक्ति युक्त, राज युक्त, योग युक्त तो रहते ही थे बाबा, तो शिव बाबा साथ ही थे बाबा के। तो बाबा यही सिखाते थे कि कोई भी कर्म जब आप बाबा की याद में रह के करोगे वो एक्यूरेट होगा, उसमें गलती नहीं हो सकती है। तो जैसे सैर करने जाते थे पहाड़ पर, अगर किसी का पांव फिसल गया, चोट लग गई, तो उसको एकदम बाबा कहते थे तुम्हारा योग, तुम योग में नहीं चल रहे थे, योग युक्त अवस्था नहीं थी, इसीलिए तुम गिरे हो। तो वो भाई या बहन का तो चेहरा थोड़ा उदास हो जाता था कि एक तो मुझे चोट लगी, मैं गिर गया, और सबके सामने बाबा ऐसे कह रहे हैं, वो अपमानित फील करते थे। तो फिर बाबा देखते थे कि अब इसका चेहरा थोड़ा मुरझा गया है, तो उस बच्चे को स्पेशल प्यार देते थे, स्पेशल टोली मिलती थी, गोद मिलती थी। ऐसे ही खेल में भी जो हार जाते थे बाबा उनको ऐसे कहते थे कि तुम योग युक्त होके खेलो तो जीतोगे। तो फिर सभी चाहते थे कि हमको, बेशक हम हारें, लेकिन बाबा का विशेष प्यार तो मिलेगा, एक्स्ट्रा गोद तो मिलेगी। तो इस प्रकार से हर बात का, जैसे मैंने कहा बैलेंस, संतुलन, लव और लॉ का, जैसे बाबा कहते ना आप भी स्नेह और शक्ति, लव और लॉ का बैलेंस रखो। तो एक बार की बात है, आप सबने सुना है कि उस समय पर आबू एक छोटा सा गांव था, इतनी दुकानें नहीं थी, इतने होटल नहीं थे जैसे आज हम देखते हैं। ये आबू रोड स्टेशन भी बहुत टूटा फूटा, और ट्रेन भी जो आती थी दिल्ली से 24 घंटे लगते थे यहाँ पहुंचने में। तो उन दिनों में पहले तो लकड़ी के चूल्हे पर ही भोजन बनता था ऊपर पांडव भवन में। फिर जब ये स्टोव निकला केरोसिन मिट्टी के तेल का, तो एक स्टोव दिल्ली से खरीद कर यहाँ भेजा गया था, तो उस पर अमृत वेले चाय बनती थी क्योंकि चूल्हा जलाने में तो समय लगता है। तो एक बार वो खराब हो गया, तो यहाँ कोई दुकान ही नहीं थी जहाँ से उसको बनवाया जाए। तो बाबा ने, तब बड़ी दीदी, दीदी मनमोहिनी यहाँ थी, तो उनको कहा कि आज एक दिल्ली पार्टी जा रही है, उनके साथ ये स्टोव दिल्ली भेजना और वो बनवा के फिर भेजेंगे। तो जैसे सुबह क्लास हुई और फिर और कामों में दीदी व्यस्त हो गई तो किसी कारण से वो भूल गई। तो एक और बहन ने आके बाबा को बोला कि पार्टी तो चली गई और स्टोव तो भेजा ही नहीं। तो बाबा ने दीदी को बुलाया। तो जैसे हम लोग भी कई बार भाई बहन कोई बात भूल जाते हैं तो हल्के रूप से लेते हैं कि हम भूल गए, हम व्यस्त थे, फिर हो जाएगा काम। तो दीदी ने भी ऐसे ही कहा कि मैं भूल गई, अब दूसरी पार्टी जाएगी फिर भेज देंगे। तो बाबा ने उनको फिर समझाया। तो मैं ये बता रही हूँ कि कैसे लव और लॉ का बैलेंस बाबा रखते थे। तो बाबा ने उनको कहा कि ये कोई छोटी भूल नहीं है, दीदी तो हल्के रूप से ले रही थी। तो बाबा ने कहा कि अब जितने दिन तक अमृत वेले बच्चों को चाय नहीं मिलेगी तो उनका योग नहीं लगेगा, जिनको आदत होती है उनको नींद आएगी, सुस्ती आएगी, तो बाबा से योग नहीं लगेगा, चाय से ही योग लगेगा। तो इतने संकल्प विकल्प मन में चलेंगे तो इस सब का बोझा आपके ऊपर आएगा। तो जब दीदी को ऐसे बोला तो दीदी का भी चेहरा वो थोड़ा सीरियस हो गई। तो फिर बाबा ने देखा तो समझानी दे दी कि ये कोई छोटी भूल नहीं है। लेकिन फिर बाबा ने दीदी से पूछा कि सब कुछ ड्रामा अनुसार होता है, ड्रामा तो एक्यूरेट बना हुआ है, तो तुम्हारी भूल थोड़ी है, ये तो ड्रामा में ऐसा होना था। तो ऐसा बोलकर उनको और ही हल्का कर दिया। तो इस प्रकार से बाबा को हम देखते थे कि शिक्षा भी दे देते थे, समझानी भी देते थे और साथ साथ प्यार भी उतना ही देते थे जो बच्चों को समझ में आ जाए कि आगे क्या करना है। और इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया बाबा के साथ हम लोग खेल पाल भी करते थे। तो दिल्ली में जब बाबा आए थे 1997 में, 97 में नहीं मतलब 67 में, अव्यक्त होने से 2 साल पहले, तो वो बाबा का आखिरी विजिट था। मधुबन से बाहर उसके बाद बाबा नहीं गए। तो वहां पर जहां बाबा ठहरे थे स्थान कम था, तो हमारी बड़ी दीदी ने प्रोग्राम बनाया कि आज शाम को सिर्फ पांडव भाई जो हैं वो बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन उनका होगा। तो हमारा तो यही मन करता था हम बाबा के साथ ही समय बिताएं, हम भी भोजन खाएं। तो मैंने कहा कि क्यों, मुझे संकल्प आया कि सिर्फ भाई क्यों खाएंगे, हम भी खाएंगे बाबा के साथ। तो मैंने भाइयों की ड्रेस पहन ली, मैं छोटी थी तो वेश बदल लिया। तो सर्दी के दिन थे तो वो मफलर टोपी उस सब से थोड़ा बाल वाल भी ढक लिए। तो और बाबा हमेशा, बाबा के लिए कोई विशेष आसन गद्दी नहीं होती थी, जब ब्रह्मा भोजन करते थे ना तो सब नीचे ही बैठते थे एक ही लेवल में। तो ऐसे राउंड में बैठे थे बगीचे में, तो मैं बाबा की सीट के साथ वाली सीट पे मैं बैठ गई। फिर जब बाबा आए सबको चक्कर लगा के दृष्टि दी तो बाबा आके बैठे यहाँ मेरे साथ। तो पीछे जो बहनें खड़ी थी वो बहुत उनको हंसी आ रही थी। तो फिर दीदी ने बाबा को परिचय दिया कि ये मोहन भाई आया है मेरठ से खास आपसे मिलने के लिए। तो बाबा तो बहुत लंबे थे ना, तो बाबा ने ऐसे मुझे दृष्टि दी, साइड में ही मैं बैठी थी। तो अब चेहरा तो नहीं बदल सकते, ड्रेस तो बदल ली, तो बाबा ने 2 सेकंड में ही पहचान लिया और प्यार से जैसे ऐसे बच्चों को करते ना, तो सिर पर का अरे ये मुट्ठी तो वो ही बच्ची है। तो फिर हमने भी बाबा के साथ भोजन किया। तो इस प्रकार से बाबा के साथ जो हमने दिन बिताए, समय बिताया, तो खास वैसे तो हर समय याद रहता है, लेकिन जनवरी मास में जब अव्यक्ति मास होता है तो इन दिनों में विशेष याद आती है। वो सब नज़ारे सामने आते हैं कि कैसे बाबा ने हम बच्चों की पालना की। और बाबा को ये बहुत होता था कि जब सवेरे मुरली चलाते थे बाबा, तो कई बार 30, 40, 50 थोड़े ही भाई बहन बाबा के सामने बच्चे होते थे, लेकिन बाबा सिर्फ उनको नहीं देखते थे, यानी उनकी दृष्टि जैसे हम देखते थे कि बेहद में दूर दूर तक बाबा, सारे विश्व के कोने कोने में बाबा की दृष्टि जा रही है। जैसे आप सब भाई बहने भी जो अव्यक्त बाप दादा के बाद, मतलब साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद आए हैं, तो मैं हमेशा समझती हूँ कि आप सबको ही बाबा, साकार बाबा ने कोने कोने में जो बाबा के बच्चे छिपे हुए थे, तो उस समय ही बाबा उनको दृष्टि सकाश देते रहते थे। वो हमको उनकी दृष्टि से मालूम पड़ता था कि बाबा सिर्फ यहाँ हद में नहीं, लेकिन बेहद की दृष्टि, बेहद की बुद्धि, बेहद सेवा के प्लान बाबा के हमेशा चलते थे। जिसमें विशेष बाबा को होता था कि विदेश में विदेशियों को भी, सारे विश्व की आत्माओं को, सब धर्म वालों को ये संदेश मिलना चाहिए। तो उस समय अंग्रेजी जानने वाली बहनें यज्ञ में कम थी, तो इसलिए बाबा ने हमको लक्ष्य दिया। हम हर साल बाबा से पूछते थे, क्योंकि उस समय सभी कहते थे विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है, तो हम पढ़ाई क्यों पढ़े। लेकिन बाबा ने ही कहा कि नहीं, आप लौकिक पढ़ाई पढ़ो और ईश्वरीय सेवा के लक्ष्य से पढ़ो। लास्ट में ये बता रही थी कि बाबा ने यही लक्ष्य दिया कि जब आपको अंग्रेजी भाषा अच्छी तरह आ जाए और उसमें अच्छा भाषण कर सको, तब तक लौकिक पढ़ाई पढ़ते रहना ईश्वरीय सेवा को लक्ष्य रखते हुए। और फिर बाबा खुद भी ट्रेनिंग देते थे, तो जैसे चित्रों पर कैसे समझाना है, जैसे आजकल कुमारियों की ट्रेनिंग होती है ना, टीचर्स ट्रेनिंग, तो हमको उस समय पर ही 10-11 साल की उम्र में ही बाबा सवेरे की क्लास में कह देते थे कि हिस्ट्री हॉल में जो झाड़, त्रिमूर्ति ये चित्र हैं, तो आज ये चित्र तुमको अंग्रेजी में रात्रि क्लास में समझाना है। तो फिर हम दिन भर उसके बारे में लिख के तैयारी करके फिर रात को बाबा के सामने सुनाते थे। तो मैं त्रिमूर्ति पर जब बता रही थी, तो बाबा ने वैसे ही बाबा के सामने, बड़ों के सामने बोलने में थोड़ा तो घबराहट होती है, लेकिन बाबा हिम्मत देते थे, शक्ति देते थे, और बाबा की आज्ञा तो माननी है। तो बाबा ने बीच में मेरे को रोका कि 1 मिनट रुको, तो मेरे को और डर लगे कि मैंने पता नहीं कुछ गलत बोल दिया, क्या हो गया। तो फिर बाबा ने सारी सभा से पूछा कि बच्ची ने जो अभी बोला वो राइट बोला या इसमें कुछ करेक्शन चाहिए। तो सबने कहा हाँ सही बोला, तो फिर बाबा ने उसमें करेक्शन की, क्योंकि पहले हम इसे ब्रह्मा विष्णु शंकर परमात्मा के 3 कर्तव्य हैं, स्थापना पालना विनाश, ऐसे बोलते थे। तो बाबा ने कहा कि नहीं, जैसे बाबा के कर्तव्य चलते हैं, पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना, तो ऐसे बोलो। तो बाबा को ये होता था कि जो भी हम बोले, जैसे मैंने कहा तोते की तरह रट कर नहीं, लेकिन उसको बुद्धि से पहले समझकर, अर्थ समझकर फिर हमको बोलना है। तो हमारे शब्द एक्यूरेट होने चाहिए। तो इस तरीके से बाबा हमको कभी बोलेंगे कि सुबह मुरली से पहले 10 मिनट, जैसे यहां भी बहने किसी टॉपिक पर भाषण करती हैं, तो बाबा ने खुद हमको वो ट्रेनिंग दी कि कल 10 मिनट पहले तुमको बोलना है। टॉपिक भी बाबा देते थे, तो उस समय बाबा नहीं होते थे हॉल में, वो बाद में आते थे, तो हम थोड़ा खुश होते थे कि चलो बाबा तो अभी नहीं है सामने। लेकिन जैसे मैंने कहा बाबा बहुत युक्ति युक्त थे, तो उस समय यज्ञ में सभी खड़ाओं पहनते थे, और वो लकड़ी की खड़ाओं से वैसे तो फरिश्तों की तरह चाल थी सबकी, लेकिन फिर भी थोड़ा तो आवाज होता है। तो जब बाबा हॉल में आते थे दरवाजे पे, तो मालूम पड़ जाता था कि बाबा आ गए। उस दिन हमने तो यही सोचा कि बाबा नहीं सुन रहे हैं, लेकिन जब बाबा ने मुरली सुनानी शुरू की तो पहली बात ही ये बोले कि जैसे बच्ची ने अभी सुनाया उस पर ही बोला। तो फिर हमको पता लगा कि बाबा कितना युक्ति से उस दिन आवाज नहीं, धीरे धीरे चल के दरवाजे के पीछे खड़े होके बाबा ने पूरा सुना। तभी तो बताएंगे क्या ठीक है नहीं है, ट्रेनिंग तो ऐसे ही दी जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सिखाया बाबा ने सब कुछ, लेकिन बहुत युक्ति से और प्यार से। तो इसीलिए हम अपने को भाग्यशाली मानते हैं, और शुरू से ही बाबा मम्मा का, दादियों का, सारे ही यज्ञ निवासियों का हमको बहुत प्यार मिला है, और उनके प्यार और वरदानों से ही मैं समझती हूँ कि हम चल रहे हैं। पुरुषार्थ तो हम इतना कुछ करते नहीं है, ना करना पड़ता है, बस एक ही बात का ध्यान रखते हैं कि जो बाबा की श्रीमत है बस श्रीमत पर चलना है, और कोई बात मन में नहीं लानी है, तो सब सहज हो जाता है। ओम शांति।